हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आ गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के सातवें स्कंद में छठे अध्याय के अंतर्गत एक महाजन प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं जो उन्होंने अपने दैत्य बालक सहपाठियों को दी उसका हम श्रवण कर रहे हैं। ये 5 साल का छोटा बालक अपने सहपाठियों को शिक्षा दे रहा है। और इसके आज 14वें श्लोक का हम पाठ करेंगे। तो आइए इसका पाठ करते हैं। कुटुंब पोषाय व्यं निजायो न बोध्यते अर्थं विहतं प्रमत्तः सर्वतापत्रीय दुखहितात्मा निर्वेद्यते न स्वकुटुंब रामः कुटुंब पोषाय वय निज आयुर कुटुंब के भरण पोषण के लिए अपनी स्वयं की आयु को व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है। आ रहा है इसका अर्थ समझ में? कुटुंब के भरण पोषण के लिए अपनी स्वयं की आयु को खर्च कर रहा है। व्यय का मतलब खर्च करना। और दूसरी लाइन में है न बुध्यते अर्थम, अपना भला किस में है ये नहीं जानता। न बुध्यते, समझता नहीं है, जानता नहीं है। अर्थम, अपना लाभ किस में है और क्यों नहीं समझता है। अपना लाभ किस में है ये क्यों नहीं समझता है। विहतम, प्रमत्तः, प्रमत्तः किसको कहते हैं, पागल को। प्रमत्तः एक भाषा हमारी में शब्द है, पराई मत पे चलने वाला, जिसको अपनी बुद्धि नहीं है दूसरी की बुद्धि से चले, उसको कहते हैं परमत। तो ये परमत अपना हित नहीं जानता है। तो एक शब्द बीच में कौन सा रह गया, विहतम, विनिष्ठ। वो उसको ये पता नहीं है कि मैं अपना अनिष्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो परमत है, पागल है। किस चीज से पागल है, सर्वत्र तापत्रय दुखित आत्मा। सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सब जगह, सब समय, सब परिस्थितियों में। सर्वत्र तापत्रय, तापत्रय मतलब तीन प्रकार के कष्ट इस भौतिक जगत में सबको, इस जगत की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा देवी त्रिशूल लेके देती है। सबको तीन ताप हैं, कौन से, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि देविक का अर्थ क्या है, प्रकृति का कोप, भूकंप आए, अकाल आए, कोरोना आए, ये हो गया आदि देविक। और आदि भौतिक, दूसरे प्राणी हमको दुख दें, छोटे मच्छर से लेके शेर तक, और उन सब से इतना परेशानी नहीं है जितना इंसान ने इंसान को परेशान किया। और तीसरा आध्यात्मिक का क्या अर्थ है, अपने शरीर से और मन से उत्पन्न होने वाली पीड़ा, ये सबको सब समय सब जगह भोगनी पड़ती है। और इससे होता क्या है, ताप आएगा तो क्या होगा, दुखित आत्मा, वो बेचारा पीड़ा भोगता है। आत्मा का मतलब वो व्यक्ति जो कुटुंब के पोषण में अपनी आयु बर्बाद कर रहा है और ये नहीं जानता है कि मेरा अनिष्ट हो रहा है, मेरी आयु विनिष्ट हो रही है, खत्म हो रही है, क्योंकि वो पागल हो गया है। तीन प्रकार के प्रकृति के तापों को सह रहा है, दुखित है, फिर भी निर्विद्यते न, तब भी निर्विद्यते न का मतलब तभी भी, निर्विद्यते शब्द का अर्थ है हृदय में वैराग उत्पन्न नहीं होता कि ये छोड़ दूं। निर्विद्यते का श्रील प्रभुपाद जी अर्थ लिखते हैं, पश्चाता, पश्चाता नहीं है, पश्चाताप नहीं करता है कि मेरी आयु जा रही है, मेरा समय व्यर्थ जा रहा है, इसका पछतावा नहीं करता। क्यों नहीं करता, आखिर क्या मिल रहा है, नहीं करता है। स्वकुटुंब राम, अपने कुटुंब में उसको क्या मिलता है, राम। राम पता है शब्द कहां से निकला है, संस्कृत में राम शब्द है रमण का। रमण का किसको कहते हैं, खिलौने को। ये बच्चों का खिलौना होता है ना, जब बच्चे को खिलौना मिलता है तो उसको भूख लगती है तो भी खाना नहीं खाता है, नींद आती है तो भी नहीं सोता है,
वो उसी में खेलता रहता है। तो हमारा कुटुंब का खिलौने ऐसे हमको मिले हैं कि उसमें हम इतने पागल हो गए हैं, दुख आता है तो कहते हैं कोई बात नहीं, ये भी सुख है। ये आत्मरामा का अर्थ ये है। क्या क्या? कुटुंब रामा, एक होते हैं आत्माराम, आत्माराम है वो आत्मा में रमण करते हैं, एक होते हैं कुटुंब रामा वो कुटुंब में रमण करते हैं, और कौन से राम होते हैं? इंद्रिय रामो, भगवत गीता में इंद्रिय रामो, इंद्रियों में रमण करते हैं, इंद्रियों के भोग में रमण करते हैं। परंतु साधु को किस में रमण करना चाहिए? रमनते योगिनो अनंते, अनंत भगवान में रमण करना चाहिए। राधा रमण तो हमारे लिए तो वो राम है, परंतु ये कुटुंब वालों का जो राम है वो क्या है? निज आयु वया। सुश्री प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। अति अधिक आसक्त मनुष्य ये नहीं समझ सकता है कि वो अपना बहुमूल्य जीवन, ये हम कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? 7, 6, 14 प्रहलाद महाराज महाजन की शिक्षाएं, ठीक है। प्रहलाद महाराज ग्रस्त है, स्वयं ग्रस्त है, उसका पुत्र विरोचन, उसका पुत्र बलि, तो उसकी परंपरा भी है, फिर भी ये जो कह रहा है अपने अनुभव, अभी तो बच्चा है लेकिन उससे पहले समझ रहा है, फिर भी कुटुंब में गया है। इसका अर्थ है, इसलिए प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है अति अधिक। अति अधिक शब्द से ये ध्वनित होता है कि कुछ तो जवाबदारी निभानी चाहिए, परंतु पागलपन की हद तक नहीं। क्योंकि ये शब्द जो लिखा है अति अधिक, ये महत्वपूर्ण है अपने आप में। ये माइक्रोफोन भी इसी श्लोक के अनुसार कभी भी सीधा नहीं खड़ा होगा, ये उधर ही वापस जाएगा जहां से आया। देखो मैं सवेरे से सोच रहा हूं इस श्लोक का और माइक्रोफोन आपस में क्या संबंध है। इसका ये टूटा हुआ, मर गया। अत्यधिक मनुष्य ये नहीं समझ सकता कि वो अपना बहुमूल्य जीवन, बहुमूल्य जीवन निज आयु, निज आयु हमारी बहुमूल्य जीवन है, जो अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। अति अधिक पहले शब्द को ध्यान देना, नहीं तो क्या सारे लोग संसार में घर परिवार नहीं रहेगा तो दुनिया कैसे चलेगी? तो इसलिए दो शब्द तो हमारे पास है ही, ग्रस्त आश्रम और गृह मेदी, ग्रस्ती और गृह मेदी। तो ये गृह मेदी की सूचना है, जो केवल जिसकी बुद्धि केवल ग्रस्त में ही लगी हुई है। तो अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो ये भी नहीं समझ पाता है कि इस मनुष्य जीवन का जो परम सत्य, परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, उद्देश्य अनजाने ही विनिष्ट हुआ जा रहा है। ये प्रभुपाद जी ने अनुवाद में तात्पर्य लिखा है कि उसकी निज आयु का उद्देश्य है परम सत्य का साक्षात्कार करना। तो मानव जन्म मिला है भगवान को जानने के लिए, ये तो पशु नहीं जान सकते, वो ये कार्य नहीं कर पा रहा है। वो ये कार्य नहीं कर पा रहा है और ये उद्देश्य विनिष्ट हो रहा है। ये कौन से श्लोक का, ये कौन से शब्द का परिभाषा है प्रभुपाद ने लिखा है, ये लाइन क्यों लिखी है? ये श्लोक में शब्द है विहितम, विनिष्ट हो रहा है। क्या विनिष्ट हो रहा है? भगवत साक्षात्कार का बहुमूल्य समय विनिष्ट हो रहा है। किसमें? कुटुंब के अति अधिक आसक्ति के भरण पोषण। फिर भी वो इतनी चतुरता एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी दमड़ी न खोई जाए। ये श्लोक के अंदर बहुत न बुध्यते विहितम प्रमत्तः। अब ये तुलना की जा रही है, क्या तुलना की जा रही है? जीवन मानव का उद्देश्य है भगवान को जानना पाना, उसकी सेवा में लगना। उसके लिए तो वो समय को नहीं लगाता है, परंतु बुद्धिमान है, मूर्ख नहीं है, चतुर है। एक दमड़ी भी कहीं जाने नहीं देता है। उसको ये चिंता होती है कि मेरे घर में आटा है कि नहीं है, मेरे घर में चीनी है कि नहीं है, मेरे घर में पति है कि नहीं है। अभी पति कौन सा है मैं नहीं कहता हूं, चाहे कि पति है कि असली पति है, कि घर में है कि नहीं है, इसकी चिंता तो बहुत रहती है सुबह से शाम तक। और जो भगवान है उसकी चिंता नहीं रहती। ये सच है कि नहीं? सब गृहस्थियों को ये चिंता रहती है कि कल खाएंगे कहां से, घर कैसे चलाएंगे। ये चिंता नहीं है कि दूसरे मिनट में क्या होने वाला है, भगवान को कब याद करेंगे, ये ध्यान नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी का तुलना आत्मिक अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि पागल का, बिल्कुल पागल है कि खाने पीना की का पता नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है केक और स्वीट की चिंता करता है घर में, कि हमारे घर में मीठा लड्डू है कि नहीं है, कचौरी है कि नहीं है, घेवर है कि नहीं है, उसकी चिंता रहती है, परंतु भगवान की चिंता नहीं करता है। इसका मतलब परमत का ये अर्थ है कि वास्तव में पागल नहीं है, लेकिन भगवत तत्व में पागल है। इसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सोया हुआ है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, परंतु सोया हुआ है। किस बात में सोया हुआ है? भगवत साक्षात्कार के कार्य को पूर्ण करण में सोया हुआ है। ये जगत वालों सबका हाल है कि नहीं? सभी सोए हुए हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार यद्यपि संसार में आसक्त व्यक्ति सदैव तीनों प्रकार के कष्ट सहता रहता है, किंतु वह संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। अरुचि कौन से शब्द के लिए है? निर्वेद्य, निर्वेद्य उत्पन्न नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्या लिखा है? स्वकुटुंब रामा की परिभाषा प्रभुपाद ने कहां लिखी है अनुवाद में? पैसे की चिंता में लगा रहता है कि धन कहां है। तो अब प्रभुपाद जी के अनुवाद का रसास्वादन कीजिए। तात्पर्य, प्रभुपाद ने पहला शब्द लिखा है परमत को, मूर्ख व्यक्ति। परमत का अर्थ लिखा है मूर्ख व्यक्ति न तो ये समझ पाता है कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, न ही ये समझ पाता है कि वो किस तरह अपने परिवार वालों के भरण पोषण में ही अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ बिता रहा है। तो यहां हमारे परमत के दो कारण प्रभुपाद ने लिखे। पहला कारण क्या है? अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को नहीं जानता, ये है मुख्य। और दूसरी मूर्खता क्या है? उसको जानता नहीं है, इसलिए वो केवल परिवार के भरण पोषण में ही अपने आयु का खर्च कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो इससे इससे ध्वनित क्या होता है, इससे ध्वनित ये होता है, प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के 13वें अध्याय में जहां ज्ञान के लक्षणों में है, घर परिवार में आसक्ति नहीं होना, ये ज्ञान का लक्षण है 18 लक्षणों में है, किसी को याद? अविविचारे न भक्ति योगे न सगुणान समति, ये नहीं है, क्या है? अमानितुम अदम्भितुम, ये नीचे आएगा ना, पुत्र दार आदि न अभी स्वंग तम, ऐसे घर परिवार में अति आसक्त होना ज्ञान का लक्षण नहीं है। तो वहां प्रभुपाद ने चार बातें लिखी हैं, श्री प्रभुपाद ने लिखा है जिस गृहस्थी के घर में ये चार चीजें हैं, भगवान का छोटा मंदिर, घर में जो रसोई में बने वो उसका भोग भगवान को लगे, परिवार प्रसाद खाए, घर में गीता भागवत का पाठ हो और नाम का कीर्तन हो, ये चार चीजें जिस घर में है वो गृहस्थ का घर वैकुंठ है। ये प्रभुपाद जी ने इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि वो पहले लक्ष्य को जानता है, वो मूर्ख नहीं है, वो जीवन के लक्ष्य को जानता है कि हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है, भगवान के साथ सेवा के माध्यम से संबंध स्थापित करना है जो हम भूल गए हैं, और इस संबंध में ये परिवार हमारा सहयोगी है, हम सब मिलके ये कार्य करेंगे, भाई अकेला नहीं कर सकता है, सब मिलके करेंगे, दो रास्ते हैं करने का, अकेला करो या सब मिलके करो। कली काल में तो चेतन महाप्रभु ने संकीर्तन के लिए कहा है, संकीर्तन तो सब मिलके करना है, तो गृहस्थी के घर में अगर कीर्तन हो, जय ग्रह, क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जय ग्रह मृदंग बाज, क्या हाँ, जय ग्रह भजन कीर्तन मृदंग है, मृदंग लिखा है, जय ग्रह कीर्तन मृदंग का आवाज आए उसको गोलोक जानो, ये बहुत बड़ी बात लिखी है कि वो गोलोक है जहां, क्या है मृदंग वाजे सुने हृदय आनंदित हो, ऐसे घर में भजन कीर्तन हो, ये तो इससे ध्वनित क्या हो रहा है कि मुख्य रूप से घर का उद्देश्य भगवान के ऊपर केंद्रित होना चाहिए, कुटुंब के भरण पोषण के ऊपर नहीं। अब ये है नकारात्मक, इस श्लोक में कहा गया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तो कोई ऐसे हैं जो ऐसे नहीं करते हो और भगवान का भजन करते हो, ऐसा कोई उदाहरण आपको समझ में आता है जिनके लिए भगवान चिंता करते हैं? भाई श्रीवास ठाकुर का घर घर परिवार है लेकिन कुछ भी नहीं करता है, वो भरण पोषण की चिंता नहीं करता है, वो तो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन का आयोजन करता है, और चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि तुम्हारा घर परिवार कौन चलाएगा, मतलब कृष्ण चलाएगा, दुनिया चला रहा है क्या, मेरा घर पार नहीं चलाएगा क्या? तो बोला नहीं दिया तो, बोला नहीं दिया तो उपवास कर लेंगे, बोला दूसरे दिन नहीं दिया तो, बोला गंगा जी का जल पी लेंगे, बोला तीसरे दिन, बोला गंगा जी ने विसर्जन कर देंगे, और क्या करेंगे जी, के नहीं देता है तो नहीं दे। तब महाप्रभु ने क्या घोषणा कर दी, लक्ष्मी भिखारी हो सकती है जो कभी संभव नहीं है, परंतु श्रीवास तेरे घर में कभी अभाव नहीं होगा। तो जो भगवान का भजन करता है उसी के पास का उसका भगवान पालन पोषण नहीं करेंगे क्या? ऐसा सुधामा विप्रा है जिसके घर में भगवान का भजन ही होता है और घर में कुछ खाने को नहीं है तो कोई बात नहीं, उपवास चलेगा। तो भगवान द्वारकानाथ ने अपने समान महल बना दिया उसको। तो इसके हमें भक्तों को क्या समझना चाहिए ग्रस्त में भगवान को मुख्य जीवन में रखना चाहिए, जो जीवन का पहला लक्ष्य है वो प्रभुपाद ने पहले लिखा है। मूर्ख ये नहीं जानते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीवन के मुख्य उद्देश्य को जानने के बाद किसी भी अवस्था में रहे, चैतन्य महाप्रभु का स्थान स्थिति, अब जिसमें जो भी आपका वर्ण है आश्रम में कोई बात नहीं, परंतु आप यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, बस अगर ये आपको एक समझ में आता है तो आपका जीवन सफल है, और ये नहीं समझ में आता है तो कितना भी कुटुंब का भरण पोषण करके बंगले गाड़ियां बनाओ परंतु मूर्ख नंबर वन हो। अब दुनिया में मूर्ख नंबर वन ज्यादा है के बुद्धिमान, मूर्खों से दुनिया भरी हुई है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि हमारे राज में अंधे कितने हैं, आंख वाले कितने हैं, बोला महाराज आंख वाला कोई नहीं है, सारे अंधे। बोला सारे अंधे कैसे हैं, ये सब चल रहे हैं, बोला महाराज आप हमारे साथ चलो। बोला क्या करते चले, बोला हम दोनों चलते हैं रास्ते में। और अब वो पुराने जमाने की बात है कि पुराने जमाने में क्या रस्सी के तीन रस्सी बनाने के लिए से रस्सी को घुमा घुमा के जोड़ते रहते थे। बोला महाराज आप चलो रास्ते में, या माई आप साइकिल चला के चलो महाराज। अब महाराज साइकिल, महाराज क्या हो गया, लिखता है लिखो अंधे की लिस्ट में, देख नहीं रहा है साइकिल चला रहा है। अरे महाराज ये क्या हुआ, लिखो अंधे की लिस्ट में, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है फिर भी पूछ रहे हैं। तो ये सर ही अंधे हैं, समझदार होते तो क्यों पूछते। तो ये दुनिया में सारे के सारे प्रहलाद महाराज की अनुभूति के अनुसार एक महाजन की मूर्ख अंधे हैं। ये शरीर, अच्छा ये लाइन आए तो उसके ऊपर चर्चा करें। वो अपनी हानि के एक छदाम की भी गणना करने में पटु होते हैं। अच्छा अब किस बात की बात, अपनी हानि वास्तविक, अब किसकी हानि हो रही है, मेरा 10 रुपया खर्च हो जाए उसके लिए परेशान होते हैं, लेकिन मेरे 10 मिनट खर्च हो गए उसकी चिंता नहीं है। आप इसको ऐसे समझ लो, बड़े होशियार होते हैं कि 10 रुपया बचाएंगे लेकिन 10 मिनट का ध्यान नहीं रखेंगे। अब 10 रुपये और 10 मिनट में कौन सा ज्यादा बहुमूल्य है, 10 मिनट जीवन के आप 10 करोड़ रुपये देने से वापस नहीं खरीद सकते, लेकिन 10 रुपये की क्या वैल्यू है। लेकिन ये मूर्खता है कि नहीं हम सबकी। वो एक महात्मा कहता था, वो बैंगन खरीदने जाते हैं ना, उसके तोलने के बाद एक उठाते मुस्कुरा के, अरे भैया एक ले लो, और घर में आके घर वाले कहते ठीक तरह से पचाना संभाल के रखना। अरे जहां मुस्कुराना चाहिए घर में सुख से, वहां झगड़ा करेगा, और एक बैंगन के लिए बाहर मुस्कुराहट बांट के आ जाएगा, मुस्कुराहट ही समाप्त हो गई तो घर में झगड़ा ही करेगा। तो एक बैंगन के लिए परेशान है लेकिन परिवार के लिए परेशान नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें आप जीवन में हमारे देख लें, मथुरा में 15 रुपये की चीज मिल रही है, यहां 20 रुपये की है, मैं मथुरा लेने जाऊंगा, तो मथुरा जाए आएगा उसके 25 रुपये खर्च होंगे, वो उसका ध्यान नहीं है, 15 वाली चीज लेके आया हूं, 20 वाली नहीं लिए मैंने। अब मूर्ख दोनों में से कौन सा, यहां से मथुरा गया आया कितना खर्चा लगा, हाँ उसका भी ध्यान नहीं, 15 रुपये मैं आपसे सस्ती चीज ले आया, तू मेरे से सस्ती चीज ले आया, 2 दिन अपने 2 घंटे जीवन के खराब करके आया, उसका क्या करोगे, मैंने 20 वाली चीज ली और 20 मालाएं जप ली, और तू 15 वाली चीज लाया और 2 घंटे खराब करके आया। ये इसको कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फूल्स, क्या पेनी वाइज पाउंड फूल्स, दमड़ी के लिए चमड़ी जाए लेकिन फिर कहीं घर सारा अपना जीवन उजड़ जाए तो परवाह नहीं। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं अपने छोटे के धन के लिए तो बड़ा सावधान रहता है, पर आयु जो बहुमूल्य बहुमूल्य है उसके लिए सावधान नहीं है। ये सत्य है कि नहीं है, ये हमारी मानसिकता ऐसी बनी हुई है, क्यों बनी हुई है मालूम नहीं, लेकिन ये इसको पागलपन कहा गया है। पटु होता है, लेकिन वो इतना मूर्ख होता है कि ये नहीं जानता है कि वो भौतिक गणना के अनुसार कितना धन खो रहा है। चाणक्य पंडित उदाहरण देते हैं कि जीवन का एक क्षण लाखों रुपयों के से भी नहीं खरीदा जा सकता। जीवन का एक क्षण लाखों रुपयों से भी नहीं खरीदा जा सकता। जब सिकंदर सुना है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर ही कहते हैं ना, जब भारत में आए थे विजय ही, तो बीमार हो गए, मलेरिया हो गई। तो इसका मतलब विजय ही से तो मच्छर ज्यादा शक्तिशाली हुआ ना, मच्छर ने उसकी सेना का सत्यानाश कर दिया, सबको मारता हुआ मच्छर से मारा गया। ये हमने आपको कभी पहले बताया होगा, एक महात्मा मस्त सोया हुआ था रोड के ऊपर, तो राजा की सवारी आ रही थी, तो कहा हटो महाराज राजा आ रहा है। बोला राजा क्या होता है? बोला देश का मालिक होता है, उसका आदेश सब जगह चलता है। बोला सच चलता है? बोला हाँ चलता है। बोला मेरे को राजा से बात करनी है। उठ के खड़ा हो गया, राजा आया। बोला महाराज नमस्कार, ये कहते हैं आप राजा हैं, आप राजा हैं? बोला हाँ हूँ राजा। बोला आपका राज के ऊपर आदेश चलता है? बोला हाँ चलता है। बोला एक काम करो, ये मच्छर मुझे रोज काटता है, इसको मना करो मेरे को नहीं काटे। राजा कहता है मच्छर तो मेरी नहीं सुनता है। बोला किस चीज का राजा है फिर? सुनता तो तेरी मच्छर भी नहीं है, और तुम अपने आप को राजा कहते हो तो किस बात के राजा? ऐसे मूर्ख आपको बहुत मिलेंगे, कहेंगे क्या करें कथा में आके, हम अपनी मर्जी के मालिक है। बोले तुम्हारी मर्जी चलती कहां है? बोला जैसे मैं चाहूंगा वैसे करूंगा। भाई तू चाहेगा वैसे करेगा तो तेरे बाल सफेद ना हो, रोक के दिखाओ। ये तो तुमसे रुकते नहीं है, तुम्हारा बस कहां चलता है? बोलो बताओ कहां चलता है? केलव इसको परमत, इसको मूर्खता कहते हैं। तो यहां सिकंदर की बात हम कर रहे थे, जब मरने की स्थिति में था तो अपने जो सेनापति और मंत्री को बुला के कहा, सारे विश्व को मैंने विजय किया है, आधा विश्व आपको देता हूं, आप मुझे एक महीना जीवन का दे दो तो मैं अपनी मां के पास जाऊं वापस और अपने देश पहुंचूं। तो कहते महाराज ये तो संभव नहीं है, हम कैसे आयु दे दें आपको? एक महीने के लिए आधा राज दे रहा था। बोला कोई बात नहीं, एक दिन जीवन का दे दो और सारा राज ले लो जो मैंने जीता है दुनिया में, मैं चिट्ठी लिखूं अपनी मां को। महाराज एक दिन भी दे नहीं सकता। तब सिकंदर ने घोषणा की कि मैंने जीवन देके विश्व को जीता, आज वो सारा विश्व दाव पे लगा रहा हूं एक दिन के लिए, और उसके बदले में एक दिन नहीं मिल रहा है। सारे जीवन से दुनिया को कमाया और वो अब मैं दाव पे लगा रहा हूं, ले लो मेरे को एक दिन दे रहो, नहीं मिल रहा है। तो एक दिन जीवन का आपकी जीवन भर की कमाई से खरीदा नहीं जा सकता। तो कितना बड़ा महत्वपूर्ण अपना जीवन है, एक सांस भी व्यर्थ चला जाए ना, वो कितना बहुमूल्य है हमको मालूम नहीं है। इसलिए कहावत है कोई सांस भगवान के नाम के जपने के बिना खाली न जाए, नहीं तो बहुत घाटा हो जाएगा। श्वास श्वास सिमर गोविंद, हर सांस के साथ भगवान का नाम नहीं चलेगा, जो सांस बिना नाम के गया वो घाटा हो गया, रुपया गया घाटा नहीं हुआ, सांस बेकार गया तो घाटा हो गया। एक किसान था, लकड़ी बेचता था, राजा कहीं अचानक भटकता हुआ प्यासा चला गया, किसान ने पानी पिला दिया, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको चंदन का बन दे दिया। बोला काम क्या करते हो? बोला लकड़ी बेचता हूं, लकड़ी से अपना निर्वाह करता हूं। बोला अच्छा, लकड़ी रोज बेचते हो कितना मिलता है, तो 2-4 रुपये मिलते हैं, परिवार चलता है। तो बोला इसको चंदन का बाग दे दो, चंदन का बाग दे दिया। ये मूर्ख चंदन का महत्व तो नहीं समझे, रोज चंदन की लकड़ी काटे और जाके लकड़ी के भाव में बेच के आ जाए। राजा ने कहा अब तो इसी को कोई चिंता नहीं होगी, चंदन का बाग है, अभी तो लकड़ी नहीं बेचता होगा। मंत्री ने कहा महाराज रोज उठा के लकड़ी बेचता है और बाग का 3/4 हिस्सा चंदन सारा उजाड़ के बेच दिया है लकड़ी के मूल में। राजा ने आके कहा मूर्ख एक लकड़ी को ले जाके पूछो बाजार में कीमत कितनी है किसी समझदार से। बोला एक लकड़ी ही 5,000 रुपये की है। बोला 5,000 रुपये की लकड़ी, ऐसे तो मैं रोज की 50 लकड़ी 5 रुपये में बेचता हूं। बोलता है महामूर्ख हो, चंदन को लकड़ी समझ रहा हो। और तब राजा ने, राजा के साथ जो पुरोहित था उसने कहा महाराज सुनो, ये तुम्हारा मानव जन्म है ना, इसका एक एक सांस चंदन के वन के समान है, इसको तुम कोड़ी के बदले लकड़ी के बदले वैरत में मत गमाओ। भगवान ने इतना बड़ा बहुमूल्य हमारे को मानव जन्म दिया है, उसको हम कोड़ी के बदले गवा रहे हैं क्या? हीरे जैसा मानव जन्म कोड़ी बदले जाए। कोड़ी अभी की भाषा नहीं है, पहले रुपया पैसा नहीं होता था। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्यमृत में लिखते हैं कि नदी को जब पार करना था तो कोड़ी देनी पड़ती थी। जो कोड़ी है, कोड़ी आपने देखी है छोटी, वो जैसे आंख जैसी शक्ल होती है ना, ये शंख बड़ा है ऐसे, वो छोटी छोटी कोड़ी होती है। तो आदमी को कहते तू कोड़ी का आदमी है, इसका मतलब बेकार है, ये सारे ही कोड़ी के आदमी है, भले इनके पास पन्ने के पैसे पड़े हो, कोड़ी भी इनके जीवन का वैल्यू नहीं है। तो ये जो बात लिखी है चाणक्य पंडित ने, क्या लिखा है, जीवन के एक क्षण को जीवन भर की कमाई देके खरीदा नहीं जा सकता, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, इसको व्यर्थ में नहीं गमाना चाहिए। तो ये मानव जन्म चंदन का बाग है जो हमको मिल गया है, और अब इसको हम व्यर्थ में गवाएंगे तो मूर्ख कहलाएंगे, ठीक है। अब प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति ऐसे मूल्यवान जीवन का बिना ये जाने के जाने ही बिताता है कि आर्थिक गणना के अनुसार कितना जीवन व्यर्थ चला जाता है। अब प्रभुपाद कहते हैं अगर मानो के एक दिन आप 1 करोड़ रुपये में खरीद नहीं सकते, और ऐसे हमारा समय बहुत समय बड़े बड़ी उम्र के समझदार लोगों को मंदिर के बाहर के चौराहे के ऊपर 4-4 घंटे ताश खोलते हुए देखा है, आपने देखा होगा कि नहीं देखा, देखा है ना, 4 घंटे बैठ के ताश खेलते हैं बाहर। अब 4 घंटे की कीमत 4 करोड़ रुपया हो गया, 4 करोड़ रुपया उनका अगर खरीदने जाए तो नहीं मिलेगा। ऐसे हम कभी उदाहरण देते हैं, ये सांस जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है रोज ले रहे हैं मुफ्त में, कोई पैसा दे रहा है क्या? अब कोरोना काल में जिसको ऑक्सीजन लगती है कितना पैसा अस्पताल देती है पता किया है? कितना, 24 घंटे का कम से कम 5-10-20 हज़ार रुपया लेते हैं आजकल ऑक्सीजन जिसको लगती है। अब ये हिसाब से आप करो कि हम जितना सांस ले रहे हैं और जी रहे हैं, एक एक आया था कोरोना काल में, एक 90 वर्ष का व्यक्ति अस्पताल से रेस्पायर जो उस पे था वेंटिलेटर से ठीक होके आया, तो ठीक होने के समय उसने बोला आपके ऊपर 2 लाख रुपये का बिल तो है यहां, रोने लगा। बोला क्यों, पैसे नहीं है? बोला पैसे तो 2 लाख के 4 लाख ले लो, परंतु ये तुमने 15 दिन ऑक्सीजन लगाई है इसके 2 लाख मांग रहे हो। आज 90 साल में मैंने भगवान की कितनी ऑक्सीजन चलाई है उसका 1 रुपया नहीं दिया है, कितना बड़ा वो महान है कि तुम्हारी 15 दिन की ऑक्सीजन के 2 लाख ले रहे हो। कितना मैं मूर्ख था, कितना उसने मेरे ऊपर कृपा किया था, मैं आज तक समझ नहीं पाया। तो ये बहुत बड़ा प्रहलाद महाराज की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। हमारा एक क्षण व्यर्थ नहीं, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और भाव भक्ति का पहला लक्षण क्या है पहचान का? अव्यर्थ कालत्वम। इसका मतलब जब तक हम भाव भक्ति के स्तर पे नहीं आते हैं तब तक समय बेकार जाता है, पता भी नहीं लगता है। कि हमारे हमारे आचार्य गोस्वामी लोग जो यहां रहते थे ना, वो भोजन पचाने में भी समय नहीं गंवाते थे। जो चने मिल गए चबा लिए, 15 दिन में द्वादशी के दिन जाते थे मथुरा में, एक दिन भिक्षा लाते थे, यहां पड़ी होती थी और जमुना में भिगा के खाते थे। बहुत ऐसे साधु हैं जो चूल्हा नहीं जलाते घर में, कितना समय जाएगा क्या करेंगे, इतना भजन हो जाए तो अच्छा है ना, ये समय क्यों चला जाए। हम तो ऐसे आइटम बनाते हैं जिसमें पूरा दिन चला जाता है, आइटम का नाम निशान नहीं होता है। इसलिए खिचड़ी सबसे अच्छे से अच्छा साधन है, सब्जियां भी उसमें, दाल भी उसमें, चावल भी उसमें, और एक बर्तन खाली हो, एक बर्तन धोना पड़ेगा। ये साधु के लिए क्या राजा का भोजन है। अब इतनी सारी वेराइटी है, 15 घंटे सारा खाने में किचन में ही गंवा दो, फायदा क्या हुआ? पेट में तो उतना ही आएगा, ज्यादा तो आएगा नहीं। तो हमारे साधु जो साधु बहुत सरल जीवन होना चाहिए, अति आवश्यक है सरल जीवन, नहीं तो भजन नहीं हो पाएगा। भजन का मतलब है भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि भौतिकवादी व्यक्ति लागत की गणना करने और व्यापार करने में पटु होता है, किंतु उसे इसी अनुभूति इसकी अनुभूति नहीं हो पाती है कि ज्ञान के अभाव में वो अपने मूल्यवान जीवन का दुरुपयोग होने दे रहा है। ऐसा व्यक्ति यद्यपि तीनों प्रकार के कष्टों को सहता रहता है, किंतु वो इतना बुद्धिमान नहीं होता कि भौतिकवादी जीवन शैली को रोक पाए। तो अब श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये कह रहे हैं, ये शरीर हमारा सुख ज्यादा देता है कि दुख ज्यादा देता है? मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं। सुख के लिए हमारे पास है कितना? 5 इंद्रियां हैं। देखने से सुख मिलता है कोई अच्छी चीज, सुनने से सुख मिलता है, सूंघने से सुख मिलता है, 5 इंद्रियां ये, और 5 इंद्रियां और कर्म और एक मन, यहां से मिलता है सुख। और बाकी सारे शरीर में कोई 300 हड्डियां पड़ी है, कोई हड्डी कभी मुस्कुराती है क्या? हाँ, कभी किसी का जिगर खिलता है? हाँ, कोई और अंग कभी किसी को सुख दिया है? आपके शरीर को बहुत अच्छे गदेले के ऊपर सुला के कोई तेल फुलेल से मालिश करे, परंतु अचानक उस गद्दे के अंदर एक छोटी सी सुई पड़ी हो और कहीं एक जगह चुभ जाए, तो मालिश का मजा आएगा कि सुई का दर्द होगा? छोटी सुई सारे सुख को एक क्षण में समाप्त करती है कि नहीं करती? तो शरीर में दुख के 100 साधन हैं और सुख के 1 साधन भी नहीं। इसलिए ये शरीर के लिए एक प्रभुपाद जी शब्द उपयोग क्या करते हैं, बैड बार्गेन। बैड बार्गेन का मतलब गलत सौदा है। हमने ऐसी चीज ली है जिसके अंदर दुख ज्यादा है और सुख नाम का भी नहीं है, ये सत्य है कि नहीं है? फिर भी हमको इस शरीर के चक्कर से छूटने के लिए समझ क्यों नहीं आ रही कि हमको ऐसा शरीर दोबारा नहीं लेना है, हमारे को सुख वाला शरीर लेना है, ये क्यों नहीं समझ में आता? निर्वेदी क्यों नहीं होते? वैराग क्यों नहीं उत्पन्न होता? दुख के बाद भी वैराग उत्पन्न नहीं होता। एक व्यक्ति अपनी बात बन रहा था, कोरोना हुआ था, हमारा भक्त अपना ही है, 1 महीना अस्पताल में वेंटिलेटर पे रहा, बचकर बोला, उस वक्त मैं सोच रहा था कि जिन जिन के साथ मैंने अपराध किया है उनको फोन करके क्षमा मांग लूं, पता नहीं अपना जीव कि ना जीव, बोला कोरोना हो गया, दुख भोगा, 24 लाख रुपए अस्पताल को बिल भी दिया, परंतु कम से कम मैं इतना अनुभव करके आया हूं कि मैंने जो गलतियां की थी वो सब मुझे दिखाई दी उस वक्त, और उनसे कोरोना ने बड़ी मेरे ऊपर कृपा की कि मेरा जीवन बदल दिया, मेरे जीवन की दृष्टि बदल दी। तो ये निर्वेद्य हो गया कि तकलीफ आई तो लगा कि कभी भी ऐसे हो सकता है, इसलिए भगवान का भजन क्यों ना कर ले। और भजन तब तक नहीं होगा जब तक जिनके द्वारा जिनको हमने दुख दिया है उनके हृदय में अपराध हमारा क्षमा नहीं करेंगे, तक तो भजन नहीं होगा। ये द्रु महाराज की मां सुनीति ने कहा था कि अगर अपनी सोतेली मां के लिए हृदय के अंदर द्वेष ले जाएगा तो भगवान नहीं मिलेगा। तो जब तक हमारा हमारे अपने भक्त समाज में ही किसी के प्रति द्वेष भाव रहा है तब तक हृदय में भगवान की भक्ति जागृत नहीं होगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन बहुत थोड़े समय के लिए है, सबसे मिलजुल के प्रेम के साथ भगवान की भक्ति करने में अधिक समय लगाएं। हरे कृष्ण। श्लोक को पढ़ लें फिर। कुटुंब पोषाय, कुटुंब पोषणाय, फिर क्या शब्द है, कुटुंब पोषणाय वय निज आयु, कुटुंब के पोषण के लिए निज आयु जा रही है। कोई कहे कि मेरा कुटुंब ही नहीं है, ये ब्रह्मचारी कहे तो, बोला फिर भी इस शरीर के पोषण के लिए ये निज आयु जा रही है, आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे, शरीर के पोषण के लिए भी आयु जा रही है, इसके लिए भी बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। सो कुटुंब शब्द का सदुपयोग कहीं किया हुआ है ऐसी जगह बताएंगे। वैसे कुटुंब शब्द का अर्थ क्या है, कूट नीति से जिसका पालन करना पड़े, चोरी करनी पड़े, बेईमानी करनी पड़े, परंतु उसका भरण पोषण करना पड़े, उसको कहते हैं कुटुंब। विजय अर्थ कुटुंब सखे। भगवान श्री कृष्ण, आपने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब समझ लिया और उसकी रक्षा के लिए सारी कूटनीति को अपना लिया, तो एक कुटुंब भगवान अपने भक्त को के शरीर को मानता है और उसका पोषण करता है, तो वो भगवान अपने भक्त की भक्ति का रक्षण करता है, उस भगवान अपने भक्त के सारे जीवन को अपना कुटुंब मान लेता है। तो हमारा बड़ा कुटुंब भक्त का, भगवान का कुटुंब बनाओ, संसार का छोटम कुटुंब को छोड़ दो। प्रभुपाद ने एक छोटा कुटुंब छोड़ा पर पूरे विश्व को कुटुंब बना दिया, तो ये कुटुंब का पोषण अच्छा है। छोटे कुटुंब से निकल के बड़े कुटुंब भगवान की सेवा में लग जाओ, पूरी दुनिया की सेवा कर लो, तो कुटुंब छोड़ा नहीं, कुटुंब को बढ़ाया लेकिन भगवान की सेवा में बढ़ाया। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है, घंटी बजने के मैं वो बज गई भाई, 2 मिनट हो गए, कोई प्रश्न जिज्ञासा नहीं है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हाँ जी बोलिए, प्रश्न है तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बात ये है कि देखो, गलतियां सबसे होती हैं, परंतु सुधारने का अधिकार किसको है ये समझना चाहिए। हम सारी दुनिया की गलतियां देखते रहेंगे, ये हमारा काम नहीं है। आपको मानो कि एक भक्त में कोई गलत चीज दिखाई या दे रही है, तो जो उसका अधिकारी है, जिसके निरंतर जिसके निर्देश में वो काम कर रहा है, उसको जाके इतना कहना चाहिए कि ये जो काम कर रहा है भक्त, इससे न इसका हित होगा न समाज का होगा, मुझे इससे कोई शत्रुता नहीं है, द्वेष नहीं है, आप जैसे चाहें करें, मेरा काम खत्म। फिर उसको आंखें बंद कर दो, तो आपने अपना काम कर दिया, बस खत्म। उसको आप हृदय में रख के बैठोगे तो वो दोष आपके अंदर भी आ जाएगा। सबसे ज्यादा हमारे अंदर दोष कहां से आते हैं? दूसरे के दोष का ध्यान करते करते हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए उसको निकाल के छोड़ो, उसको पकड़ के मत रखो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। हरे कृष्ण।